समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो आज मैं सबसे पहले आपको कहूंगी कि आप मुस्कुराइए, क्योंकि आज स्माइल डे है। तो आधे घंटे के इस कार्यक्रम में जानेंगे देश दुनिया के समाचार, चलेंगे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी, व्यापार जगत के उतार चढ़ाव पर भी नजर होगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, क्यों ना मुस्कुराएं आज, और क्योंकि हमारे श्रोता सब ऑल इंडिया रेडियो पर जो भी हमको सुन रहे हैं।
यस, नमस्कार दिव्या एंड ऑल आवर लिसनर्स, एंड यस, मुस्कुराइए। एंड इनफैक्ट दिव्या, अर्ली इन द मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ मैसेज ऑन माय मोबाइल सेइंग दैट अ स्माइल इज अ कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट, सो कीप स्माइलिंग। एंड यू नो व्हाई, ऑफ कोर्स यू जस्ट सेड दैट इट्स वर्ल्ड स्माइल डे टुडे, एंड इट इज सो वेरी ट्रू। स्माइल्स हैव बीन द लैंग्वेज ऑफ लव, काइंडनेस, केयर एंड एम्पैथी। इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट समथिंग पीपल डू, सो नॉट ओनली ह्यूमंस बट एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड विथ अ काइंड स्माइल।
बिल्कुल अनुजा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम कहीं सफर कर रहे होते हैं, हम सब एक दूसरे से अनजान होते हैं, लेकिन एक स्माइल होती है जो आपको सामने वाले से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देती है, और इतनी कंटेजियस होती है कि एक स्माइल करता है, उसको देख के दूसरा स्माइल करता है और फिर उसके बाद सब स्माइल करने लग जाते हैं।
ऑफ कोर्स, एंड स्माइल इज अ नेचुरल मूड बूस्टर एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। स्माइलिंग ऑल्सो हेल्प्स यू अपीयर मोर अप्रोचेबल एंड ट्रस्टवर्दी, मेकिंग पीपल मोर लाइकली टू वॉन्ट टू हेल्प यू इफ यू आर स्ट्रगलिंग। सो नेक्स्ट टाइम यू आर फीलिंग लो, डोंट बी अफ्रेड टू गिव स्माइलिंग अ ट्राई।
बिल्कुल।
And now let's begin with the news headlines. RBI keeps repo rate unchanged at 6.5%, commits to remain focused on withdrawal of accommodation to tame inflation and support growth.
सरकार ने सिक्किम में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किया। बाढ़ग्रस्त राज्य को आपदा सहायता के रूप में लगभग 45 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने की मंजूरी दी।
7 killed after major fire breaks out at a 7-story residential building in Mumbai.
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती साझेदारी दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है।
एंड एट द हांगझोउ एशियन गेम्स इन चाइना, इंडिया बैग्ड ब्रॉन्ज मेडल्स इन आर्चरी, बैडमिंटन एंड सेकपैक तोकराव ऑन डे 13, कंट्रीज ओवरऑल मेडल टैली रीचेज 91। And Divya, the Nobel Prize for Peace has been announced. Iranian human rights activist Narges Mohammadi has been awarded the Nobel Peace Prize 2023 for her fight against the oppression of women.
जी अनुजा, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नरगिस 19वीं महिला होंगी जो अभी भी जेल में हैं और ईरान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक हैं।
राइट, मिस मोहम्मदी हैज बीन अरेस्टेड 13 टाइम्स, कन्विक्टेड 5 टाइम्स एंड सेंटेंस टू अ टोटल ऑफ 31 इयर्स इन प्रिजन एंड गॉट 154 लैशेस। द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी हैज डिसाइडेड टू अवार्ड नरगिस मोहम्मदी फॉर हर fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. Her brave struggle has come with tremendous personal costs, of course.
और सुश्री मोहम्मदी को 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में लगभग 10 लाख अमरीकी डॉलर का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
राइट, एंड नाउ टाइम फॉर आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, इन विच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट नेशनल और ग्लोबल लेवल। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड सेरेब्रल Palsy Day. Today is World Cerebral Palsy Day, which is a global observance that shines a spotlight on cerebral palsy. Cerebral palsy is a group of disorders that affect a person's ability to move and maintain balance and posture. Cerebral palsy is the most common motor disability in childhood. Cerebral means having to do with the brain, and palsy means weakness or problems with using the muscles. So cerebral palsy is caused by abnormal brain development or damage to the developing brain that affects a person's ability to control his or her muscles. It is also important to note that cerebral palsy is a term used to cover several brain conditions that develop before, during, or soon after birth. It is a physical disability that affects movement and coordination and can impact different parts of the body. It is not a disease, an illness, or something that cannot that someone can catch, of course.
बिल्कुल अलजा, और दुनिया भर में हर साल 6 अक्टूबर को सेरेब्रल पॉल्सी दिवस मनाया जाता है. इस साल का विषय एक साथ और अधिक मजबूत है, जो बताता है कि जब परिवार, देखभाल करने वाले और समुदाय एक साथ आते हैं तो वे सकारात्मक परिवर्तन और समावेशन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाते हैं. सेरेब्रल पॉल्सी विकलांगता और विकारों का एक समूह है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सेरेब्रल पॉल्सी के कई कारण हो सकते हैं. जन्म के समय बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिले, इसके अलावा रक्तचाप नियंत्रित न हो, गर्भावस्था में मां को कोई संक्रमण या फिर कोई आनुवंशिक कारण बच्चे के मस्तिष्क के विकास में बाधा बनते हैं. इसके कई लक्षण हो सकते हैं अनुजा, जैसे कि इसमें बच्चा बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. मस्तिष्क का जितना हिस्सा प्रभावित होता है उतना ही शरीर का हिस्सा काम नहीं करता है. तो ब्रेन और मसल्स का इसमें एक तरीके से कनेक्शन होता है. तो ब्रेन जहां से कंट्रोल करता है इसको, वही मसल्स वीक पड़ जाती हैं और जिससे वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है. अगर ये बीमारी एंजाइम की कमी या जेनेटिक वजह से हुई है तो इसका असर और ज्यादा होता है. इस स्थिति में बच्चा 10 से 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाता. गर्भावस्था में मां को कोई संक्रमण हुआ हो तो शिशु में सेरेब्रल पॉल्सी का असर हल्का होता है और उसका जीवन थोड़ा लंबा हो सकता है.
Right, Divya, cerebral palsy is a permanent and non-progressive disorder. The condition does not get better or worsen as time goes on, but the severity of symptoms can be improved and managed with adequate treatment. So we need to get to the doctor as soon as possible to get some medical help from them. The symptoms of this vary from person to person. A person with severe cerebral palsy might need to use special equipment to be able to walk, or might not be able to walk at all and might need lifelong care. A person with mild cerebral palsy, on the other hand, might walk a little awkwardly or anything of this sort. But it does not get worse over time, though the exact symptoms can change over a person's lifetime. So, in this case, as I just mentioned, a doctor's help is needed.
बिल्कुल. और अनुजा, इसके अलावा सेरेब्रल पॉल्सी का इलाज और बचाव के कई उपाय भी हैं, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चों और वयस्कों को आजीवन देखभाल की आवश्यकता हो सकती है. इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता हो सकती है. माता पिता के लिए बच्चों की स्थिति पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक माना जाता है. इस रोग का कोई पुख्ता उपचार तो नहीं है. सहायक उपचार के माध्यम से इसके लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है. सेरेब्रल पॉल्सी की रोकथाम भी नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ उपाय जैसे कि वैक्सीनेशन और शराब धूम्रपान जैसे जोखिमों से बचाव के उपाय करके रोग के खतरे को कम किया जा सकता है.
राइट दिव्या, बट द मेन थिंग विच नीड्स टू बी प्रैक्टिस इज पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. वी कैन हेल्प आवर चाइल्ड रीच क्रिटिकल सोशल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स. The creation and building of social relationships are one of the many milestones that children affected by cerebral palsy may have difficulty in achieving. So we need to empathize with them and understand them and share a friendship with them.
जी जी.
There are many ways to help children affected by cerebral palsy, like, as I said, practice patience and try to communicate using methods they find most comfortable. And of course, we need to develop some gestures which can fill the gaps they may encounter in speech, or use apps to help your child develop communication and language comprehension skills as well. So this, all these things impacts a child's ability to connect with other children, whether it be through communication, impaired mobility, or a lack of self-confidence. It is difficult for children with cerebral palsy to avoid isolation. So we need to encourage socialization with them and, of course, to monitor their individual's mood, behavior, and their physical health. So we need to be more empathizing with the children. And talking to Akashwani News, Professor Shefali Gulati, Department of Pediatrics at the All India Institute of Medical Sciences in New Delhi, elaborated on cerebral palsy along with the symptoms, treatment and methods to cope with the challenges faced by those having cerebral palsy. Let's hear her.
Today on the World Cerebral Palsy Day, the theme is Together Stronger. Everybody, the patients, the professionals, all other citizens of the society, they all have to get together and help these children live their meaningful life. And we have the color of this day is green, which reflects youthfulness, new growth as a hope and advancements in treatment and acceptance.
अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है विशेष समाचार। तो चलते हैं देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में आदिवासी छात्रों के लिए चौथे राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस सांस्कृतिक साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के 22 राज्यों के 2000 से अधिक आदिवासी छात्रों की छिपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया। आइए कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानते हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाता से।
राजधानी देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 3 से 6 सितंबर तक चौथे राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक साहित्य और कला उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह आयोजन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों को देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति को समझने तथा सीखने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोग प्रेरित होंगे और उन्हें अपनी संस्कृति के साथ ही देश के विभिन्न कोनों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के समृद्ध परंपराओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आदिवासियों की विविध परंपराओं, संस्कृति और राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में 22 राज्यों के 2000 से अधिक आदिवासी छात्रों ने प्रतिभाग कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस उत्सव में 20 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें संगीत, नृत्य प्रदर्शन से लेकर प्रश्नोत्तरी और दृश्य कला शामिल है। साथ ही उस समय आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न राज्यों के स्टॉल की व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि आदिवासियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विकास के समान अवसर तक पहुंचाने में मदद करने की आवश्यकता को समझते हुए मंत्रालय प्रति वर्ष ईएमआरएस सांस्कृतिक उत्सव और खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इससे आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है। ईएमआरएस अनुसूचित जनजातियों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालयों की सरकार की ओर से एक योजना है। यह योजना सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2018-19 में इस योजना को नया रूप दिया गया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से संजीव सुंदरियाल।
And the Tamil Nadu Forest Department has identified around 18 ancient rock shelters or caves at Gudiyam village in Tiruvallur district. The department has proposed to declare the prehistoric Gudiyam caves where Stone Age people lived, and 4,500 hectares of the surrounding Eastern Ghats forest in Tiruvallur district as the Alikuli Landscape Conservation Reserve. Historical records show that these rock shelters were used by people from the Stone Age lakhs of years ago. Robert Bruce, the British geologist, in 1864 first investigated these rock shelters and later documented them in the Geological Survey of India memoir in 1873. We have a report from our correspondent.
The Gudiyam caves or rock shelters are a complex structure of 16 majestic prehistoric rock shelters and is located within the thickly foliated Pulikundram Reserve Forest near Gudiyam village in Tiruvallur district. The site is situated close to Pundi Reservoir, 60 kilometers away from Chennai city. Excavations during 1962 and 63 by Dr. K. Banerjee and his team from Archaeological Survey of India brought to light the first systematic record of Stone Age artifacts and their cultural aspects. The Forest Department has said that the caves were discovered when work was on to identify heritage sites inside forest areas as part of the Tamil Nadu Biodiversity Conservation and Greening Project. According to the department, there are many such cluster of caves in Gudiyam village alone. The department will identify them separately so that heritage tourism to such sites will be organized. These caves are natural elongated structures that end up with rocky shelters and these caves were created in Cretaceous period, which is about 13 crore years ago. Lately, they were identified using drones and satellite maps of Gudiyam village. Joy, Akashwani, Chennai, reporting for Parikrama.
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में आज नामती जिले के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत इकाइयों में संकल्प सप्ताह का तीसरा दिन मनाया गया। आइए सुनते हैं सिक्किम संवाददाता राम दुलाल की रिपोर्ट।
कार्यक्रम में सभी जीपीयू के पंचायती राज संस्थान पीआरआई के पदाधिकारी और बड़े पैमाने पर जनता की उपस्थिति थी। इस अवसर पर वक्ता के रूप में सभी ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष थे, जहां उन्होंने स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न पहलुओं पर बात की और स्वास्थ्य पर स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार जिले के अंतर्गत सभी जीपीयू में स्वच्छता शिविर, स्वच्छता अभियान भी आयोजित किया गया था, जहां सभी संबंधित जीपीयू में सभी ग्राम प्रशासनिक केंद्र बीएसई में सचेतना बैठक भी आयोजित की गई थी। परिक्रमा के लिए गांतोक से मैं दिलराम दुलाल।
And Divya, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare today organized a Millets Farmer Producer Organizations exhibition at the BSF camp in Chawla in Delhi. The event was to promote millets among paramilitary personnel and acquaint them with diverse homegrown millet products by the farmer producer organizations. Additional Secretary in the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Faiz Ahmed Kidwai, inaugurated the exhibition. Addressing the event, Mr. Kidwai highlighted how over 75,000 farmer-producer organizations in India are presently working to support small farmers with resources and market connections. He added that the 34 millet farmer-producer organizations gathered in this event are amplifying the millet movement of the country. We have a report on this.
Clad in green and red, the BSF camp today served as the hotbed for millet fair. The event had over 30 FPOs with ready-to-cook options and ready-to-eat products for paramilitary officers, staff and their families. The exhibition hosted roughly 1,000 attendees from various armed forces. The event brought forth a viable and healthy alternative for everyday snacks such as noodles, laddus and cookies. It also featured raw and broken millet grains and millet flour. BSF Mahila Pipe Band and 24 Battalion BSF Jazz Band captivated the audience with their melodious tunes. Adarsh Kumar for Parikrama, New Delhi.
And now it is time to listen to yet another chapter from India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Azadi ka Amrit Mahotsav.
October 6th is important in the history of the freedom movement as the death anniversaries of three freedom fighters fall on this date. They are Paramasivan Subbarayan, Baba Saheb Bhosle and Bhojaram Kolita. Besides being a freedom fighter, Paramasivan Subbarayan was also a politician, diplomat and the chief minister of Madras Presidency. He was born on the 11th of September 1889 in Tamil Nadu. After graduating from Presidency College Madras, he pursued his MA at the University of Oxford. Later, he obtained an LLB from the University of London and an LLD from Trinity College, Dublin. Subbarayan worked as an advocate in the Madras High Court. He started his political career as a member of the Justice Party, which he quit later and was supported as an independent candidate by the Swarajya Party.
In 1922, he was nominated to the Madras Legislative Council. He served as the Chief Minister of Madras Presidency from 1926 to 1930.
In 1933, he joined the Indian National Congress. In 1937, when the Congress swept to power in the Madras Presidency, Subbarayan was appointed as the Law Minister under C. Rajagopalachari's Chief Ministership. Subbarayan was imprisoned for participating in the Quit India movement. He was elected to the Constituent Assembly from Madras and made important contributions to the debates on adult franchise, civil services, rule of law and the official language.
From 1949 to 1951, Subbarayan served as Independent India's first ambassador to Indonesia. Subbarayan also served as a member of the Rajya Sabha from 1954 to 1957. He was elected to the Lok Sabha from Tiruchangod in 1957 and served as a member till 1962. He was again elected to the Lok Sabha in 1962, but was instead appointed as the governor of Maharashtra. He passed away on 6th October 1962. In 1989, during his birth centenary, India Post issued a stamp to honor him.
On this day in 2007, a veteran freedom fighter from Maharashtra, Babasaheb Bhosle, passed away at the age of 86. Bhosle participated in the Satyagraha in 1939 while he was a student. He was imprisoned for 1.5 years in 1941-42. Bhosle was born on January 15, 1921 at Satara in western Maharashtra. He was a law graduate and completed bar at law in 1951 and practiced for 10 years in Satara. In 1980, he was elected to the Maharashtra Assembly and later handled various important portfolios. Former President Pratibha Patil was a member of Bhosle's cabinet during his tenure as the Chief Minister of Maharashtra in 1982-83.
Bhosle started the scheme of providing free education to girl students till 10th class. He started the Aurangabad bench of the Bombay High Court and also created Gadchiroli district. Bhosle was instrumental in initiating welfare measures for freedom fighters and started a pension scheme for them.
On this day in 1942, freedom fighter Bhojaram Kolita made supreme sacrifice for the motherland. He was an active participant in the Quit India movement. On 21st September 1942, he took part in a procession at Tezpur organized to mourn the death of those who died in the Dhekiajuli firing. When the procession arrived at the compound of a church, the participants were surrounded from all sides by the police armed with lathis and guns. The police gave them 10 minutes to disperse.
No sooner had the crowd begun moving out, a very heavy lathi charge was made on them from behind. Many received serious beatings. Bhojaram Kolita, aged 65, was badly injured. 15 days after this incident, he succumbed to his injuries on 6th October 1942. That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar.
And in the business news today, the key domestic share indices ended around 0.5% up. The BSE Sensex closed near the 66,000 mark, while the NSE Nifty crossed 19,650 points. Both indices grew amid mixed global cues. The Sensex gained 364 points at 65,996, while the Nifty increased by 108 points to close at 19,654. In the forex market, the rupee closed at 83.25 rupees against the US dollar. At the multi-commodity exchange, gold was trading around 56,670 rupees per 10 grams. Silver was trading around 67,140 rupees per kilogram when reports last came in. And in intraday trade, Brent crude was trading at $84.20 per barrel. Devya, what do you have from the field of sports?
खेल में जानने के लिए हम मुकेश की तरफ रुख करते हैं जो कि स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और उनसे उनका आज एशियाड पर क्या कुछ हुआ है वो सुनते हैं।
चीन में हांगचू एशियाई खेलों में भारत ने आज 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते हैं। तीरंदाजी में पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला। फाइनल में अतन उदास, धीरज बोम्बा देवड़ा और तुषार प्रभाकर शिल्के की टीम को कोरिया से 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक जीता। अंकिता भगत, भजन कौर और सिमरनजीत कौर की टीम ने वियतनाम की टीम को 6-2 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय ने कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में प्रणॉय को चीन के ली शिफेंग से पराजय का सामना करना पड़ा।
इट्स ऑलवेज टफ टू गेट मेडल्स ओवर हियर एंड लास्ट टाइम वी हैड टू मेडल्स फ्रॉम साइना एंड सिंधु एंड नाउ वी हैव द बॉयज कमिंग इन इंस्टेड एंड first coming in the team event and then later coming in the men's singles and I think we have the men doubles later on in the evening. So I think it is a proud moment for all of us to have total three medals from the sport from the Asian Games. It shows how much quality we have in the players out there and not just individuals but as a team also how well we have been performing the last 2-3 years. All of a sudden there is a big hope from us in the team events, which I think feels good.
पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में आज भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी का सामना मलेशिया के आरोन चिया और शो वी की जोड़ी से होगा। सेपक टाकरा में महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। महिला कुश्ती में सोनम ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने चीन की लांग जिया को हराकर ये पदक जीता। महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत की किरण ने मंगोलिया की पहलवान को हराकर कांस्य पदक जीता है। क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह ली है। फाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। महिला कबड्डी में भारत ने नेपाल को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में कल भारत का सामना चीनी ताइपे से होगा। पुरुष कबड्डी के सेमीफाइनल में भी भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष हॉकी के फाइनल में इस समय भारत का सामना जापान से हो रहा है। भारत 21 स्वर्ण 33 रजत और 38 कांस्य सहित कुल 92 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। परिक्रमा के लिए मैं मुकेश कुमार।
दिव्या, मेडल्स गैलोर, हैप्पीनेस गैलोर, एंड लेट्स विश देम ऑल द बेस्ट फॉर मोर मेडल्स टू कम इन।
इसके अलावा अनुजा, अभी हमें समाचार मिला है कि भारत के पहलवान अमन ने जापान के पहलवान को हराकर भारत के लिए एक और कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 93 हो गई है।
Okay, so wishing them all the best for more events are coming for in the next 2 days. And of course, coming to our last segment of paying tributes to some great personalities, we start with.
आज ही के दिन पुण्यतिथि है परमवीर चक्र से सम्मानित नेपाली मूल के भारतीय मेजर धन सिंह थापा की। उन्हें यह सम्मान 1962 में मिला। 1962 के भारत चीन युद्ध में धन सिंह थापा को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। वे उन 4 वीरों में से एक थे जो कि उस युद्ध को झेल करके जीवित रहे। वे 8वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन से बतौर मेजर इस लड़ाई में शामिल हुए थे। धन सिंह थापा इस युद्ध में पानगोंग सो झील के तट पर सिरी जाप मोर्चे पर तैनात थे, जहां उनके पराक्रम ने उन्हें परमवीर चक्र के सम्मान का अधिकारी बनाया। इस युद्ध के दौरान धन सिंह थापा 8 गोरखा राइफल की पहली बटालियन के 27 अन्य साथियों के साथ पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर रहे और चीनी जो सैनिक थे उनसे मोर्चा लिया उन्होंने।
Right, and the next personality is V.K. Krishnamenon, who was an Indian academician, politician and a statesman described as the second most powerful man in India, who shared a very close relationship with the first Prime Minister of India. Before, during and after India's independence, Menon stood at the forefront of India's foreign relations, acknowledged domestically and internationally as India's de facto foreign minister and foreign policy architect. Domestically, he wrote the first draft of the preamble to the Constitution of India, conceptualized and created the Constituent Assembly of India, and worked closely with Mountbatten, Sardar Patel and V.P. Menon to work out the mechanics of Indian independence.
Aur Anuja, aaj पुण्यतिथि है पद्म भूषण से सम्मानित एवं सरोद वादक अलाउद्दीन खां की, जिन्होंने भारतीय संगीत के सबसे बड़े घरानों में से एक मैहर घराने की भी नींव रखी। अलाउद्दीन खां ने पंडित रविशंकर और अल्ला रखा खां को भी शास्त्रीय संगीत सिखाया था। इन्होंने संगीत को पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने का काम किया था।
And today is also the birth anniversary of Bollywood star Vinod Khanna. And he, at the start of his career, he played supporting or villainous characters in films like Purab or Paschim, Sacha Jhootha, Aan Milo Sajna. But after that, he got his first break with the lead hero in the film Hum Tum Aur Woh. Let's hear a medley of his dialogue and songs.
गरीब का दिल अगर सोने का होता है, तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। तुम कंगाल क्या खरीद सकोगे हमारे दिल और हमारे हाथ? तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ही रख दो तब भी मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा।
कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए दिव्या और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का। नमस्कार।